नेक्स्ट है, ध्वनि के तीन लक्षण होते हैं, मतलब ध्वनि के साउंड के तीन कैरेक्टर होते हैं। पहला है तीव्रता, तीव्रता को हम इंटेंसिटी बोलते हैं। दूसरा है तारत्व, उसका मतलब होता है पिच। और तीसरा है गुणता अर्थात क्वालिटी। ध्वनि किस लक्षण के कारण हम उसे ध्वनि धीमी अथवा तेज सुन पाते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि हम कोई आवाज को धीरे सुनते हैं या तेज सुनते हैं, वो उसकी इंटेंसिटी पर, तीव्रता पर निर्भर करता है। जब हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं किसी चीज की, तो ध्वनि की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जब किसी चीज की वॉल्यूम को कम कर देते हैं, तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है। और ध्वनि मोटी आवाज या पतली आवाज जो है, ये पिच पर निर्भर करता है या तारत्व पर निर्भर करता है। तो लता मंगेशकर की जो गले की आवाज तारत्व है, जितनी पतली होगी वो अधिक होगी, जितनी भारी गला होगा, मोटा गला होगा, उसका पिच जो है वो उतना कम होगा। तो ये पिच है, ध्वनि मोटी है या पतली है, कभी कभी लड़कों की ध्वनि आवाज भी लड़कियों जैसा लगता है, तो ये पिच के कारण होता है। और लड़कों का ध्वनि जो पिच है वो कम होता है, लड़कियों की साउंड पतली होती है, अर्थात उसका तारत्व या पिच जो है ज्यादा होता है। अब आते हैं, अगर समान तीव्रता है, समान इंटेंसिटी है और समान पिच है, तो भी दो आवाज अलग अलग दिखते हैं, उसका कारण होता है क्वालिटी, तो अर्थात वह है गुणता। गुणता के कारण जो है समान पिच और समान इंटेंसिटी के भी आवाज जो है में फर्क महसूस होता है। अब जैसे मैंने पहले बोला था, मोटी आवाज का तारत्व जो है, पिच जो है वो कम होता है, पतली सुरीली आवाज का जो पिच है वो ज्यादा होता है। प्रतिध्वनि मतलब हम जब भी किसी पहाड़ के सामने हम बोलते हैं, तो उसकी आवाज हमें फिर अपनी आवाज अपने कान में सुनाई देता है, उसको क्या कारण है, ध्वनि के परावर्तन या साउंड रिफ्लेक्शन के कारण ये होता है। किसी भी ध्वनि का जो है इफेक्ट, किसी भी साउंड का इफेक्ट एक सेकंड के दसवें भाग तक, मतलब एक बटे दस भाग तक रहता है। तो अर्थात कोई ध्वनि जो है वो बड़ी तेजी से आती है, तो मतलब अगर एक सेकंड से दसवें भाग से भी ज्यादा तेजी से बार बार कुछ आवाज आ रहा है, तो हम उसे कुछ समझ नहीं पाते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए, देखिए बार बार पूछा गया है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता और जहां से आवाज टकरा कर वापस आएगी उसके बीच की जो दूरी, न्यूनतम मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 16.6 मीटर है। इसे आप रट लेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। सिनेमा हॉल के दीवार पर जो है थर्मोकॉल का क्यों प्रयोग किया जाता है, ये सवाल परीक्षा में आता है। तो देखिए ये है, इसको बोलते हैं अनुरणन या बोलते हैं रिवर्बेरेशन। रिवर्बेरेशन मतलब कंपन से जो है आवाज को डिस्टॉर्ट होगा, उसको रोकने के लिए अनुरणन के लिए थर्मोकॉल का यूज किया जाता है। संगीत के कारण खिड़की के शीशे का टूटना या सैनिकों का एक ताल में पैरेड करने से पुल का टूट जाना, यह किसके लिए होता है, अनुनाद के लिए, रिजोनेंस के लिए। जैसे एक पुलिस, अगर आपके सिपाही, बहुत सारे सिपाही ये एक साथ पैर से पैर मिलाकर किसी पुल के ऊपर चलते हैं, तो पुल टूट के गिर जा सकती है, ये होता है अनुनाद या रिजोनेंस के कारण। रेडियो का कार्य करने का सिद्धांत आधारित होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिजोनेंस, विद्युत चुंबकीय अनुनाद के ऊपर। रेडियो जो है, रेडियो से जो हम गाना सुनते हैं, बातें सुनते हैं, वो किस नियम पर आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिजोनेंस के ऊपर। बंद कमरे में भी ध्वनि का सुनाई देने का कारण है ध्वनि का विवर्तन, स्कैटरिंग ऑफ साउंड। बंद कमरे में भी ध्वनि सुनाई देता है, उसका कारण है ध्वनि का विवर्तन। नजदीक के रेडियो स्टेशन का प्रसारण कभी कभी साफ सुनाई नहीं देता, इसका कारण है विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए इंटरफेरेंस को आप लाइट के इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उस वक्त इसको और अच्छी तरह समझेंगे हम। तो नजदीक के रेडियो स्टेशन का भी आवाज जो साफ साफ सुनाई नहीं देता है उसका कारण है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और समुद्र में साइलेंस जोन अर्थात नीरव क्षेत्र का होना यह भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, विनाशी व्यतिकरण का कारण है। और इसका कारण क्या है कि वहां पर जहां पे ये विनाशी व्यतिकरण होता है आप बोल रहे हैं, सामने व्यक्ति है वो सुनाई नहीं देता है, वो साइलेंस जोन में परिवर्तित हो जाता है और उसका कारण है विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।